प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। फेडरल सरकार कहती है कि फूट एंड माउथ डिसीज के खिलाफ किए गए सुरक्षा उपायों से दिखाई दे रहे हैं परिणाम। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने किया शपथ ग्रहण। और ऑस्ट्रेलिया के राइडर्स ने मनाया अधिकतर सफल टूर दे फ्रांस का जश्न। अब खबरें विस्तार से। फेडरल सरकार कहती है कि ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के FMD यानी फूट एंड माउथ डिसीज के प्रकोप को यहां फैलने से रोकने के लिए किए गए सख्त जैव सुरक्षा उपायों का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कृषि विभाग ने आंकड़े जारी किए जिसमें दिखाया गया है कि इंडोनेशिया से लौटने वाले लगभग 3,700 यात्रियों से सप्ताहांत में अकेले मेलबर्न हवाई अड्डे पर पूछताछ की गई। अधिक गहनता से मूल्यांकन किया गया। अघोषित वस्तुओं की दरों में नाटकीय कमी के साथ FMD जोखिम होने का अनुमान लगाया गया। कृषि मंत्री मरे वॉट कहते हैं कि अब डाक केंद्रों पर भी कड़ी जाँच की जा रही है। चीन और इंडोनेशिया से आने वाले सभी मेलों की अब मांस उत्पादों के लिए जांच की जा रही है क्योंकि विदेशों से गलत या अवैध रूप से लेबल किए गए मांस उत्पादों की FMD यानी फूट एंड माउथ डिसीज के ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने का अधिक जोखिम माना जाता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तट से दूर एक थोक वाहन चालक दल के सदस्य को समुद्र में रात बिताने के बाद जीवित पाया गया है। गेराल्टन के तट से 11 किलोमीटर दूर एक जहाज से 30 वर्षीय चीनी नागरिक के लापता होने के बाद एक बचाव अभियान शुरू किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई समुद्री सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा समन्वित रविवार रात की प्रारंभिक तलाशी उस व्यक्ति का पता लगाने में विफल रही, लेकिन वो आज सुबह औद्योगिक तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर पाया गया। उसे चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है। न्यू साउथ वेल्स के डेप्यूटी लेबर लीडर प्रू कार को कैंसर होने का पता चला है। लंडनडेरी की इस सांसद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक बयान में लिखा कि उनकी किडनी में एक बड़ा ट्यूमर पाया गया है और वो इलाज के लिए कुछ समय के लिए अपनी भूमिका से दूर जा रही हैं। सुश्री कार का कहना है कि इलाज खत्म करने के बाद उनकी संसद में रहने की योजना है। लेबर पार्टी के नेता क्रिस मिंस का कहना है कि उनके 39 वर्षीय डेप्यूटी को पार्टी का पूरा समर्थन है।
doubt at all that she will fight this with her customary flair and courage and we can't wait to have her back on the front lines with us in the coming weeks.
जापान के मुख्य दक्षिणी द्वीप क्यूशू के दो शहरों से दर्जनों लोगों को निकाला गया है जहां एक ज्वालामुखी से राख और बड़ी चट्टानें आसमान में फैल रही हैं। जापान की मीटरोलॉजिकल एजेंसी ने 51 निवासियों से आग्रह किया कि वे सकुराजिमा ज्वालामुखी के लिए अपने विस्फोट स्तर को 5 के उच्चतम स्तर तक बढ़ाने के बाद अपने घरों को छोड़ दें, जो कागोशिमा के दक्षिणी प्रांत में स्थित है। स्थानीय टेलीविजन पर दिखाए गए फुटेज में गड्ढे के पास नारंगी रंग की लपटें चमक रही हैं और पहाड़ की चोटी से ऊपर उठती राख के साथ गहरा धुआं दिखाई दे रहा है। 2.5 किलोमीटर दूर तक बड़ी बड़ी चट्टाने भी गिर रही हैं। ग्रीन्स का कहना है कि वे ऑस्ट्रेलियन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कमीशन यानी ABCC को खत्म करने के लिए लेबर के पहल का समर्थन करेंगे। कल यानी मंगलवार से संस्था के अधिकारों को वापस ले लिया जाएगा। कार्यस्थल संबंधी मंत्री टोनी बर्क कहते हैं कि ABCC गठबंधन द्वारा यूनियनों को कमजोर करने और श्रमिकों के लिए उचित वेतन के लिए बनाया गया था, लेकिन लेबर को कानून पारित करने के लिए क्रॉसबेंच से अधिक समर्थन की आवश्यकता होगी क्योंकि ग्रीन्स के पास ठीक आधे वोट है। ग्रीन्स के नेता एडम बैंट कहते हैं कि ABCC कुछ श्रमिकों को कम अधिकार देने के लिए मजबूर करता है।
The Greens have had that position for a number of years, and we took it to the election, and we have it now. The ABCC is an affront to the rule of law. You should not have fewer rights at work just because you happen to work in a dangerous industry like construction. That is the situation at the moment.
ABCC को खत्म करने की योजना को नियोक्ता और निर्माण समूहों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, जो कहते हैं कि इस कदम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी होगी और उनकी लागत में वृद्धि होगी। फेडरल सरकार ऑस्ट्रेलिया के वृद्ध देखभाल क्षेत्र में रक्षा बल समर्थन का विस्तार कर रही है, क्योंकि देश की एक तिहाई से अधिक वृद्ध देखभाल सुविधाएं कोविड 19 के प्रकोप से जूझ रही हैं। रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस ने घोषणा की है कि 250 रक्षा बल के जवान सर्दी के लहर में वृद्ध देखभाल घरों को मदद करेंगे। ये कदम वृद्ध देखभाल प्रदाताओं और ट्रेड यूनियनों के अनुरोधों के जवाब में है, जो अधिक समर्थन की मांग कर रहे हैं। ADF को 12 अगस्त के बाद अपने कर्मचारियों को वापस लेना था। रिचर्ड मार्लिस कहते हैं कि फेडरल स्वास्थ्य और रक्षा अधिकारियों के बीच बैठक के बाद सितंबर के अंत में ADF मेडिक्स को तैनात किया जाएगा।
It's increasing from 30 to 250, so it's a considerable increase in the numbers of Defence Force personnel involved in clinical and non-clinical care. It's not a situation that can be there permanently, but we are seeing a really significant outbreak in our aged care sector, and so it is an important step to be taking over the next couple of months.
म्यांमार के सत्ताधारी सैन्य के चार विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। पुरुषों में से एक 41 वर्षीय पूर्व लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता आंग सान सू की पार्टी का पूर्व सदस्य है, दूसरा एक 53 वर्षीय लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता है और अन्य पर एक महिला की हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसे वे एक गुप्तचर मानते थे। फांसी को अंजाम देने के फैसले ने व्यापक अंतर्राष्ट्रीय चिंता और विरोध को आकर्षित किया है, जिसमें कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन का एक पत्र भी शामिल है, जो म्यांमार में संकट को हल करने के लिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। हुन सेन का पत्र असामान्य है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशियाई सरकारें शायद ही कभी ऐसे बयान जारी करती हैं जिन्हें एक दूसरे के आंतरिक मामलों के लिए आलोचनात्मक माना जा सकता है। चुनावों में उनकी पार्टी की लगातार दूसरी शानदार जीत के बाद म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 में आंग सान सू की चुनी हुई सरकार को हटा दिया। बहामस में हेती के प्रवासियों को ले जा रही एक नाव के पलट जाने से कम 17 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार द्वीपों के सुरक्षा बलों ने शवों को बरामद कर लिया है और 25 लोगों को बचाया है। हेती गिरोह से संबंधित हिंसा की लहर से जूझ रहा है, जिसके कारण 11 मिलियन लोगों के देश से पलायन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। बहामस के प्रधानमंत्री फिलिप ब्रेव डेविस कहते हैं कि इस हादसे के पीड़ितों में 15 महिलाएं, एक पुरुष और एक शिशु शामिल हैं।
Preliminary investigation suggests that a twin engine speedboat left a docking facility off West Bay Street around 1 a.m. with approximately 60 persons on board. It is believed that their final destination was Miami, Florida.
अब खबरें भारत से। आज द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा, आजाद भारत में जन्मी मैं पहली राष्ट्रपति हूँ, मेरे निर्वाचन में गरीबों का आशीर्वाद शामिल है। साथ में उन्होंने कल यानी 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं भी दी। दूसरी ओर भारत में नए कोविड 19 मामलों में 16.8% की गिरावट है। पिछले 24 घंटे में 16,886 मामले सामने आए हैं, वही इस अवधि में 41 लोगों की मौत इस वायरस से हुई है। अब जानेंगे डॉलर का हाल। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के आ जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 69 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 55.24 रुपये हो गई है। अब खबरें खेल जगत से। और इस साल के टूर डे फ्रांस में भाग लेने वाले अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई साइकिल चालकों का कहना है कि वे अपने प्रदर्शन से खुश हैं, इसके बावजूद कि दो सवारों को कोविड 19 के कारण बाहर निकलना पड़ा। निक शल्स 23वें स्थान पर शीर्ष ऑस्ट्रेलियाई थे। साइमन क्लार्क और ल्यूक डडब्रिज दोनों को कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद अपना नाम वापस लेना पड़ा। उससे पहले साइमन क्लार्क ने दौरे का एक चरण जीता था और माइकल मैथ्यूज ने स्टेज 14 की अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद बाइक एक्सचेंज जेको के साथ एक और साल के लिए फिर से हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन कैलब यूविन को लैंटन रूज से प्रतियोगिता करके टूर के अंतिम स्थान पर रहने वाले केवल दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बनने का संदिग्ध गौरव प्राप्त हुआ है, जो आखिरी स्टेज जीतने में असफल रहे। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल एक या दो बौछार हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। एडलेड में आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। मेलबर्न में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम तापमान 12 डिग्री तक रहेगा। कैनबेरा में बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 5 और अधिकतम तापमान 12 डिग्री तक रहेगा। सिडनी में एक या दो बौछार हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। ब्रिस्बेन में धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। डार्विन में भी धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान रहेगा 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल आंधी के साथ बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। मौसम की जानकारी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।